समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों के बारे में देंगे जानकारी और आर्थिक जगत के उतार चढ़ाव पर भी रहेगी हमारी नजर। अंत में उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विथ मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first.
तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें आज कृष्णा जिले के केसरपल्ली आईटी पार्क में राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।
मोहन चरण माझी टू बी स्वॉन इन एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा दिस इवनिंग।
18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा।
World Bank pegs India to remain world's fastest growing economy to log 6.7% GDP growth over the next 3 fiscal years.
और न्यूयॉर्क में आज शाम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का सामना अमरीका से।
And now, Akarshita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Day Against Child Labour. And Kailash Satyarthi very famously said, children should have pens in their hands, not tools. Well, the International Labour Organization Director, General Guy Ryder, very aptly said, there's no place for child labour in society. It robs children of the future and keeps families in poverty. And the International Labour Organization, ILO, along with its member countries, observes June 12th as the World Day Against Child Labour. Launched in 2002, the day aims to acknowledge the plight of children forced to work in extreme conditions and simultaneously calls for action. A work transgresses into child labour when someone below the age of 18 is hired in environments that are physically or mentally harmful, thus depriving them of their childhood. Poverty, social inequality, disasters, trafficking and internal conflicts in a country are among the major factors that lead to increase of child labour. Children who are forced into child labour are subjected to abuse, sexual exploitation and discrimination, and would have to compromise on the basic rights and education. And Akarshita, like we are saying, this year marks the 25th anniversary of the adoption of the Convention on the Worst Forms of Child Labour. It presents a chance to encourage all stakeholders to enhance the implementation of the two main conventions on child labour, namely Convention No. 182 and Convention No. 138 on the minimum age for admission to employment or work. And let's also touch upon the theme of this day. The theme is Let's Act on Our Commitments, End Child Labour, which emphasizes the need for collective action to eradicate child labour and protect children from exploitation. It encourages governments, employers, workers, civil society and individuals to work together to create a world free from child labour.
जी, तो आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। भारत में बाल श्रम की समस्या दशकों तक रही है और भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। केंद्र सरकार ने 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित कर दिया था। इस अधिनियम के अनुसार बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई और इस समिति की सिफारिश के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप अर्थात बाल गणेश, बाल गोपाल, बाल कृष्णा, बाल हनुमान आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। भारत की धरती ध्रुव, प्रहलाद, लवकुश एवं अभिमन्यु जैसे बाल चरित्रों से पटी हुई है। इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। बाल श्रम को ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो बच्चे की उम्र या शारीरिक या मानसिक क्षमता के लिए अनुपयुक्त है। इसके दूरगामी परिणाम उनके विकास और भविष्य पर भी असर डालते हैं। भारत में संविधान स्पष्ट रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खदानों, कारखानों या खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है जिसे खतरनाक काम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये कानून बच्चों को बाल श्रम के साथ होने वाले शोषण से बचाने के लिए है।
Yes, Akarshita, and as per UNICEF data records, 1 in 4 children is engaged in harmful work in the poorest countries. African countries have the highest percentage of child labourers, while Asian and South American countries lead in numbers. And promotion of personal safety among children, child protection policies in schools, and increased awareness of parents are essential to prevent sexual abuse of children. Younger children tend to be more vulnerable, and specific approaches aimed at strengthening the protective role of families and education environments. And let's also talk about the forms of child labor. All forms of slavery or practices similar to the slavery, including but not limited to the sale of or trafficking of children, debt, bondage, or enforced or compulsory labor. It also means the forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict, the use of child for prostitution for the production of pornography or for pornographic performances, the use of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties. It also includes work by its nature or the circumstances in which it is carried out that is likely to harm the health, safety and morals of children.
और अभिषेक, अब उन कार्यों की बात करते हैं जिसमें जिसको बाल श्रम नहीं माना जाता है। ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों द्वारा किए गए सभी कार्यों को उन्मूलन के लिए लक्षित बाल श्रम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में बच्चों या किशोरों को ऐसे काम में भागीदारी जो उनके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित नहीं करती है या उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा नहीं डालती है, आमतौर पर कुछ सकारात्मक माना जाता है। इसमें घर के आसपास अपने माता पिता की मदद करना, पारिवारिक व्यवसाय में सहायता करना या स्कूल के घंटों के बाहर या स्कूल की छुट्टियों के दौरान पॉकेट मनी कमाना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अब वास्तव में माना जाता है कि ये गतिविधियां बच्चों के विकास में योगदान करती हैं।
सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आकर्षिता, इज हाउ कैन वी स्टॉप चाइल्ड लेबर इन इंडिया? Well, it is extremely necessary to stop child labor in India to see a nation that is booming and prospering. And Indian government has incorporated many regulations to prevent child labor, such as making employment below 14 years a punishable offense. But it is the responsibility of every individual to do their bit. And here are some of the essential ways how the citizens of India can help in controlling childhood labor in the country. Firstly, educate and spread awareness. Secondly, create awareness of the laws and policies in place. Thirdly, educate child labourers' parents or guardians. Fourthly, stop people to employ children in homes, shops, factories, etc. Fifthly, partner with NGOs. And sixthly, send more children to school. So let us all do our bit to end this scourge.
और अभिषेक, भारत में जो बाल श्रम के कारण हैं उनमें जैसे अधिक जनसंख्या, देश की जनसंख्या उपलब्ध रोजगार के अवसरों की तुलना में अधिक है, या फिर अशिक्षा, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि यदि कोई बच्चा वित्तीय या सामाजिक कारणों से शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है तो उसके मजदूरी पर काम करने और परिवार की मदद करने का विकल्प चुनने की अधिक संभावना है। या फिर गरीबी, आर्थिक तंगी और गरीबी से उबरने के लिए माता पिता अपने बच्चों से पैसों के लिए काम कराने को मजबूर होते हैं। या फिर शहरीकरण एक कारण है जिसमें अनाथ बच्चों के लिए, जैसे कोई बच्चा है जो अनाथ है, अनाथों के लिए अधिकारियों द्वारा नए प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि वे शिक्षित हो सकें और अपनी आजीविका और अस्तित्व के लिए कम उम्र में काम करने से बच सकें। या फिर वयस्क बेरोजगारी, जब तक वयस्कों को रोजगार नहीं मिलेगा वे अपनी संतानों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, जो अंततः बाल श्रम की ओर ले जाता है। और
And child labor is one of the biggest roadblocks to human rights worldwide. Children around the world are routinely engaged in paid and unpaid forms of work. In almost all regions of the world, boys and girls are equally likely to be involved in child labor. Gender disparities observed, however, the types of activities carried out with girls far more likely to be involved in domestic work. Poverty and lack of school are considered as the main causes of child labour. Children engaged in work do not go to school and have little or no time to play. Many even do not receive proper nutrition or care, essentially being denied the chance to be children. And about 1.4 million child labourers in India in the age group of 7 to 14 years cannot write even their names. This means one in three child labourers in the said age group are illiterate. And the extreme form of child labour, that is forced labour, in which children suffer not only the impact of hazardous working conditions, but also trauma of the coercion, threats of penalty and lack of freedom.
भारत सरकार ने बाल श्रम को संबोधित करने के लिए विभिन्न पहल लागू किए हैं, जैसे बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। ये अधिनियम खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और गैर खतरनाक क्षेत्रों में उनके काम को नियंत्रित करता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जिसका उद्देश्य उन्हें स्कूल में रखना और बाल श्रम से दूर रखना है।
Yes, and to conclude our discussion, Mahatma Gandhi very famously and rightly said, "There is no justification for child labour. The child is the future of a nation. Let us allow him to develop physically, mentally, and morally." So, Akarshita, we must all stand up for the rights of children. We should all raise our voice to end child labour for a sustainable future. So on World Day Against Child Labour, let's all invest in children, invest in progress, and say no to child labour and exploitation.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Sital Shashti, a grand festival of Western Odisha, marks the holy marriage of Lord Shiva with his consort Devi Parvati, is celebrated towards the end of summer every year. And according to the Hindu calendar, it falls on Jyeshtha Shukla Paksha Shashti Tithi. The historic Sital Shashti Yatra ended today with pomp and grandeur. Let's hear more from a correspondent, Alok Chandra.
The festival was started about 400 years ago after the Chauhan king Raja Valiyar Singh invited some Brahmin from Puri to reside in Sambalpur. The Brahmins brought this tradition to the Western Odisha culture. The marriage was first held at Somnath Baba temple of Balibandha. In due course of time, the festival gained immense popularity and was later started in several other neighborhoods. On the Akhay Tritiya Tithi, the Thalautha ritual marked the beginning of the festival. Each temple committee selects from a horde of applicants the family who it decides is best suited to host the mother goddess as a daughter. Engagement takes place in the form of ritual Patarpindi, when the Saptarishis or seven people representing the seven sects walk to the bride house and complete the negotiation process by presenting the family with sargi leaves. The marriage happens on the day of Shashti. When the Lord visits the house of Parvati in a Jian procession, the groom stays in the bride house for a day, after which the gods return to their temple. The Bharat as well as the homecoming procession are a spectacle to behold. People throng the city to witness the carnival. The festival also marks the congregation of thousands of artists from different parts of the state and serve as a platform for them to showcase their talent. The procession also comprises colorful tableaus modeled on contemporary and mythological subjects. The festival also marks the onset of rains and on the homecoming day of the gods almost every year. The people are blessed with showers. Phark Parikrama, this is Alok Chandra Barik from Akashvani, Sambalpur.
जम्मू कश्मीर में 5,000 से अधिक लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर में वार्षिक खीर भवानी मेले के लिए आज जम्मू से अपनी यात्रा शुरू की। इनमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 4 दिन की इस तीर्थ यात्रा को जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, राहत आयुक्त डॉ अरविंद करवानी और प्रमुख कश्मीरी पंडित नेताओं ने जम्मू शहर के बाहरी इलाके नगर रोटा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ज्येष्ठ अष्टमी पर मनाया जाने वाला वार्षिक खीर भवानी मेला 14 जून को गांदरबल के तुलमुल्ला, कुपवाड़ा के टिक्कर, अनंतनाग के लक्तीपोरा, एशमुकम, कुलगाम में माता त्रिपुर सुंदरी देवसर और माता खीर भवानी मंजगाम के मंदिरों में आयोजित किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के बाद ये कश्मीर में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और जम्मू कश्मीर में इसका बहुत महत्व है।
Yes, and the Minister of Tourism, after considering the efforts for sustainable environment protection, declared the Tagore Arts College campus as a must-visit place in Puducherry. So tourists from various states have now started to visit this campus and spend hours with green environment. Tagore Arts and Science College is now a model for other colleges in the Union Territory. We have more from a Puducherry correspondent, Shiva Kumar.
Tagore Arts College, the first and oldest government college in Puducherry, is now wearing a new look. The new landscape made the college premises as urban forest. The parent campus of the college spreads over 18 acres, and earlier there were some trees here and there. Dr. Sasikanta Das has taken over as principal of the college in 2017, and in these 7 years, he leaves no stone unturned to make the campus greenery. Now the campus has 12 gardens and each has bearing the names of freedom fighters. There is also a pond for rainwater harvesting, and this raised the underground water level to 4 feet. Now there are 7,000 trees and 120 species of plants in the campus. 25 species of butterflies are in the butterfly park. The green campus now shelters for 25 varieties of bears. Each tree is tagged with QR code. Scanning the QR code gives the details of the tree. This is really a good practical class and field experience for the botany students. Students are the caretakers of the trees and environment, and as a punishment, a student has to plant a sapling and look after it till she completes her study. While contacting Dr. Sasikanta Das, the principal of Tagore Arts and Science College said that the environment is cooling the minds of the student and make them feel easy to learn in the classrooms. The campus is also an extended classroom. The principal said that at present the strength of the students is 3,500 and the results have improved far better. While the exam results in 2016 was only 37%, but in 2023 the percentage is 73%. This proved that good and green environment make impact in the learning of students. Dr. Sasikanta Das proudly concluded. This is Shivakumar, Deputy Director News, Akashvani, Puducherry.
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल हो रहे हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
अगर आप आम खाने के शौकीन हैं और अपने प्रिय फल आम के बारे में ढेर सारी जानकारियां भी चाहते हैं तो आप आ सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। यहां 12 से 14 जून तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां आम की 150 से अधिक किस्में और उससे बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा आम सजावट प्रतियोगिता भी यहां आयोजित की गई है, जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी, महिलाएं और आम नागरिक भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में आम की विभिन्न किस्मों के अलावा आम से बने विभिन्न उत्पाद और आम के पौधे भी विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही उच्च गुणवत्ता के आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन, आम के विभिन्न उत्पाद और उनके विपणन के साथ ही आम उत्पादन के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी यहां प्रदान की जा रही है, जिससे नई पीढ़ी के लोगों को आम उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा सके। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हम सबके प्रिय फल आम और उसकी सभी सामान्य और खास किस्मों, विशिष्ट उत्पादों तथा भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए रोजगार के साधनों की जानकारी सामान्य नागरिकों, महिलाओं, विद्यार्थियों, नव उद्यमियों और किसानों को प्रदान करना है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हेमचंद्र कानूनगो का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 12 जून 1871 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। 1908 के अलीपुर बम कांड में विषि अरविंदो के साथ मुख्य आरोपी थे। वे कलकत्ता ध्वज का सृजन करने वालों में शामिल थे, जिसके आधार पर जर्मनी के स्टटगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भिखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज फहराया था।
चल, 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 चल। गगने बाजे मादल दिने युतला धरणी तल तरुण प्रातेर तरुण दल चल रे चल रे चल।
बरेंद्र कुमार घोष और अरबिंदो घोष के निकट सहयोगी हेमचंद्र कानूनगो गुप्त बम फैक्ट्री की स्थापना में विशेष रूप से सक्रिय रहे थे। बम बनाने का गुर सीखने के लिए वे पेरिस गए और इस यात्रा के लिए पैसे का इंतजाम उन्होंने कलकत्ता का अपना घर बेचकर किया। 1906 के अंत में वे मार्सिली पहुंचे तथा कुछ महीनों तक स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड में क्रांतिकारियों से संपर्क बनाने की कोशिश करते रहे। अंततः उन्हें पेरिस में रसायन शास्त्र के अध्ययन के दौरान एक सहयोगी मिल गया।
১৯০৮ में हेमचंद्र भारत लौटे। उनके साथ ट्रंक भरकर अत्याधुनिक तकनीकी साहित्य था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था बम बनाने की कला पर रूसी से अनुदित 75 पृष्ठ की जानकारी। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को बम बनाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्होंने कोलकाता के निकट मानिक तला में एक गुप्त बम फैक्ट्री शुरू की। इस फैक्ट्री के संस्थापक सदस्य थे हेमचंद्र कानूनगो, औरबिंदो घोष तथा उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष।
दो सदस्यों का एक आत्मघाती दस्ता मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने के लिए भेजा गया। हालांकि गलत लक्ष्य पर बम चलाने के बाद स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले आत्महत्या कर ली, लेकिन खुद ही रामबोस पकड़ लिए गए। इस घटना के परिणाम स्वरूप हेमचंद्र कानूनगो की लगाई बम फैक्ट्री पर ब्रिटिश पुलिस ने छापा मारा और इसे बंद कर दिया। कुछ ही समय में लगभग सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीपुर बम कांड में शामिल होने के लिए हेमचंद्र को अंडमान में आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन 1921 में उन्हें रिहा कर दिया गया।
১৯২৬ में उनकी पुस्तक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में हेमचंद्र ने बंगाल में पहली सशस्त्र राजनीतिक क्रांति के इतिहास का विश्लेषण किया। 8 अप्रैल 1951 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।
आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अपूर्व सेन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो वर्ष 1932 में 12 जून को शहीद हुए थे। चटगांव के जनरल पोस्ट ऑफिस में क्लर्क अपूर्व सेन क्रांतिकारियों के बीच भोला के नाम से जाने जाते थे। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद पुलिस फरार हो गए लोगों की तलाश में थी।
एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कैप्टन कैमरून ने 12 जून 1932 को पटिया की साबित्री चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा, जहां जवाबी गोलीबारी में अपूर्व सेन मारे गए। देश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन।
१८५७ में 12 जून को ही आजादी की लड़ाई के आंदोलनकारी सलामत अली, अमानत अली और शेख हारो ने अपनी तलवारों से लैस होकर कमांडेंट मेजर मैकडॉनल्ड के बंगले पर हमला किया था। उस समय मेजर मैकडॉनल्ड सर नॉर्मल लेस्ली और असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट के साथ चाय पी रहे थे। लेस्ली मौके पर ही मारा गया और अन्य दोनों अधिकारी घायल हो गए। तीनों आंदोलनकारियों को फांसी दे दी गई। इन महान देशभक्तों को हमारा शत शत नमन।
In business news today, India's equity benchmark indices ended in green today. The Sensex rose 150 points or 0.2% to close at 76,606. Nifty gained 58 points or 0.25% to settle at 23,323. In the global crude market, Brent crude is trading at $82.71 per barrel. WTI crude is trading at $78.79 per barrel when reports last came in.
अभिषेक, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज शाम न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें अपने पिछले दो मुकाबलों में अजेय रही हैं। एक अन्य मैच में एंटीगुआ में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेट से हरा दिया, जबकि फ्लोरिडा में श्रीलंका और नेपाल का मैच बारिश के कारण बिना खेले ही रद्द हो गया।
And now we have reached that section of our program wherein we remember all those greats who are associated with today's date एंड वी स्टार्ट विथ
जी सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज दार्शनिक गोपीनाथ कविराज की पुण्यतिथि है। योग और तंत्र तथा संस्कृत और अंग्रेजी के प्रति उनकी रुचि आरंभ से ही थी। गोपीनाथ कविराज जी की प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं विशुद्धानंद, विशुद्ध नंदवाणी, अखंड महायोग, भारतीय संस्कृति की साधना, तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि, तांत्रिक साहित्य और काशी की सारस्वत है। गोपीनाथ कविराज सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना समय प्राचीन ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म आदि पर चर्चा और तांत्रिक साधना में ही बिताते रहे। 1934 में सरकार ने उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त वे निम्नलिखित सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं।
पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे और पूला देशपांडे पास्ड अवे इन 2000, popularly known by his initials Pula or P.L. Deshpande. He was a Marathi writer and humorist from Maharashtra. He was also an accomplished film and stage actor, scriptwriter, author, composer, musician, singer and orator. He was often referred to as Maharashtra's beloved personality, and Deshpande's works have been translated into several languages, including English and Kannada.
Aaj hi punyatithi hai Purushottam Lakshman Deshpande ki.
Yes, and we had just mentioned that.
So we are right now taking Telugu Bhasha ke prakhyat kavi Singhi Reddy Narayan Reddy. Singhi Reddy Narayan Reddy ko Gyan Peeth Puraskar Padma Shri tatha Gyan Peeth Puraskar Padma Bhushan adi se sammanit kiya gaya hai. Ve apni peedhi ke sarvadhik jane mane kaviyon mein se ek the. Ve 5 dashakon se bhi adhik samay tak kavya rachna mein lage rahe. Ab tak ki unki 40 se adhik kritiyan prakashit ho chuki hain jisme kavita, geet, sangeet, natak, nritya natya, nibandh, yatra, sansmaran, sahitya lochan tatha ghazle hain.
Yes, and Robin Miriam Karlsson, known as Robin, was born on this day. She's a Swedish pop singer, songwriter, record producer and DJ. And her 1995 debut album, Robin Is Here, produced 2 Billboard Hot 100 Top 10 singles, Do You Know What It Takes and Show Me Love. Her second and third albums, My Truth and Don't Stop the Music, were released in Sweden. Let's listen in to a hit track, Because It's in the Music, and it's from her album, Honey.
आज एन फ्रैंक की आज जयंती है। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इसमें उन्होंने अपनी नाजियों से छुपकर बिताए गए समय के बारे में लिखा है। एन फ्रैंक की मौत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यातना शिविर में हो गई थी। 12 जून आज ही उनका जन्मदिन है। अभिषेक, मुझे उनकी जो ये एन फ्रैंक की डायरी थी उसकी चंद लाइनें मैंने बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि उन्होंने महिलाओं की जो तुलना है वो सेनानियों से की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर दुनिया के सभी हिस्सों में पुरुषों को बहुत सम्मान दिया जाता है, तो महिलाओं को उनके हिस्से का सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए। सैनिकों और युद्धनायकों को सम्मानित और याद किया जाता है। खोजकर्ताओं को अमर प्रसिद्धि दी जाती है। शहीदों का सम्मान किया जाता है, लेकिन कितने लोग महिलाओं को भी सैनिक के रूप में देखते हैं। महिलाएं जो मानव जाति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करती हैं और दर्द सहती हैं, वे उन सभी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी नायकों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत और साहसी सैनिक बनती हैं।
Yes, and she was one of the most discussed Jewish victims of the Holocaust. She gained fame posthumously with the 1947 publication of In Which She Documents Her Life in Hiding from 1942 to 1944, and it is one of the world's best known books. Her diary, of course, and it has been the basis for several plays and films. And Ilathu Valapil Sridharan was born on this day in 1932. He's an Indian engineer and politician from the Indian state of Kerala. He is credited with changing the face of public transport and leading the development of the Konkan Railway and the Delhi Metro. and at the same time he has served as the managing director of Delhi Metro Rail Corporation between 1995 and 2012. Known as the Metro Man, he was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2001. So with that, it's time to wind up this edition of Parikrama. Thank you so much for being with us. Till the next time, this is Akarshita and me, Abhishek Mukhopadhyay, signing off. Bye and Namaskar.